आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद में मंदिर में स्वागत है। हम सब यहां पर क्या करने आए हैं? भगवान की भक्ति करने के लिए। हम किस मार्ग पे चल रहे हैं? भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में हम चल रहे हैं तो भक्ति मार्ग के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी रास्ते पे हम चल रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम कहां जाना चाहते हैं, और साथ साथ में क्या ये रास्ता हमें वहां ले जाएगा, और रास्ते में कौन से दृश्य हमें दिखाई पड़ेंगे। पहला रेलवे गेट आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, बाद में सीधा जाना, फिर बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, सही नक्शा हमारे पास होना चाहिए। इसी तरह से भक्ति के बारे में भी हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। ये संसार में हरेक जीव अपना हित चाहता है ना? ये स्वाभाविक है, और हरेक को चाहना भी चाहिए अपना हित। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने अहित के लिए जानबूझकर कार्य करेगा? लेकिन समस्या केवल ये है कि लोग अपना हित क्या है ये नहीं जानते हैं, अज्ञान से, इसलिए वो गलत कार्य कर बैठते हैं। लेकिन अगर हमें ज्ञान पड़ जाता है कि भक्ति करने से ही हमारा वास्तविक हित है, तो फिर सभी लोग भक्ति करने शुरू कर देते हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग में भी हमें जानना चाहिए कि अंत में हमें क्या मिलेगा, क्या फल मिलने वाला है अंत में। हर एक व्यक्ति पूछता है कि अंत में क्या मिलेगा। कोई व्यापारी है, जब किसी नए व्यापार के बारे में सोचता है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है उसे। पहले देखता है कि ये सब क्या करना पड़ेगा, ये व्यापार कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए कौन सी जानकारी हासिल करने पड़ेगी, और करके अंत में फल क्या मिलेगा। हर व्यापारी सोचेगा ना, प्रॉफिट, पैसा कितना मिलेगा अंत में। अगर इसको निश्चित रूप से मालूम पड़ा कि इसमें नुकसान होने वाला है तो कोई व्यापारी उस व्यापार में जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसे पता चला, बहुत तीव्रता से, बहुत ही ध्यान से उसने परीक्षा की इस क्षेत्र के बारे में, और पता चला कि हर महीने में 2 लाख रुपए प्रॉफिट, मुनाफा मिलने वाला है, कम से कम, अच्छा चला तो 10 लाख। तो जितना ज्यादा उसको पता चलेगा कि इसमें ज्यादा पैसा मिलेगा और उतने ही परिश्रम से, आसानी से, तो क्या उसको ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा वो व्यापार करने के लिए? उसकी श्रद्धा बढ़ेगी नहीं? उसका उत्साह बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा। वो तो उस लाइन में बड़े अच्छी तरह से रम जाएगा, अच्छे जाएगा, और वही बिजनेस करता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि भक्ति के गुण क्या हैं और अंत में हमें क्या मिलने वाला है। आपको याद है, अभी पिछले 6 महीनों में कई बार, कई रविवारों में हमने भक्ति के 6 लक्षणों की चर्चा की थी। आपको याद है कौन से है 6 लक्षण भक्ति के? पहला लक्षण कौन सा है, किसी को याद है? पहला नहीं, पहला शुभदा नहीं, क्लेश अग्नि। क्लेश मतलब कष्ट, तकलीफ, संकट, दुख। कम है किसी को? सबको काफी है ना, संकट दुख जीवन में है ना बहुत। तो अग्नि, ये भक्ति उसको नष्ट कर देगा। तो भक्ति करने से सारे जीवन के कष्ट कट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यह है भक्ति करने का पहला लाभ। हालांकि जो भक्त होता है, जब शुद्ध भक्त हो जाता है तो इन चीजों के पीछे नहीं भागता कि मेरा कष्ट दूर हो जाए, मुझे सुख मिले, ये फायदा हो, वो फायदा हो। लेकिन वो बाद की बात रही, अब की बात अब करेंगे। अब की बात क्या है कि हमें जानना होगा कि फायदा क्या मिलेगा, नहीं तो हम क्यों करेंगे भक्ति। तो हर एक व्यक्ति दुखी है, तो कौन अपने दुख से राहत नहीं चाहता है। तो ठीक है, भक्ति करो, क्योंकि भक्ति का पहला ही गुण है क्लेशग्नि, क्लेशों को नाश कर देता है। दूसरा गुण शुभदा, क्लेशों को नष्ट करके हमारे जीवन में शुभता को प्रदान करता है, सब कुछ शुभ हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। वो केवल कृष्ण भक्ति करने से होगा। सच्चे कल्याण, सच्चे मांगल्य का उदय हमारे जीवन में हो सकता है। तीसरा लक्षण कौन सा है भक्ति का? अरे वाह, माता जी ने सब लिख के रखा है, सब पढ़ाई की अच्छी। मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को लघु बनाने वाला। लघु मतलब छोटा, मोक्ष मतलब क्या है? मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना, मुक्त होकर भगवान के निराकार स्वरूप में लीन हो जाना। भगवान तो श्री कृष्ण है, वो एक व्यक्ति है, लेकिन उनके दिव्य शरीर का तेज जो है उसको ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म प्रकाश कहते हैं, ब्रह्म तेज। और जो ज्ञान योग का पथ स्वीकार करते हैं वो चाहते हैं कि आत्मा को इस ब्रह्म तेज में लीन कर दें, अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर दें, शून्य कर दें, भगवान में मिल जाएं, लीन हो जाएं, अपने अस्तित्व को खत्म कर दें। भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अच्छा नहीं है, ये आध्यात्मिक आत्महत्या के बराबर है। जैसे इस शरीर को नष्ट करने से हम कहते हैं कि आत्महत्या हो गई, खुदकुशी हो गई, उसी तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से जो आत्महत्या है वो है भगवान के निराकार ज्योति में लीन हो जाने का प्रयास। तो कई ज्ञान योगी है जो इस चीज को चाहते हैं, संसार से मुक्त होना, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, लेकिन भगवान की भक्ति करने से इतना लाभ मिलता है, इतना फायदा मिलता है कि मोक्ष, ये भी जो सबसे बड़ा उद्देश्य लोग मानते हैं, जो जिनको थोड़ा बहुत भी आध्यात्मिक ज्ञान है, उस मोक्ष को भी ये तुच्छ बना देता है। मतलब भक्ति के सामने मोक्ष क्या है? लघु, लघुता, एकदम तुच्छ है। चौथा लक्षण कौन सा है? सुदुर्लभा। सुदुर्लभा का मतलब क्या है? बहुत कठिनाई से मिलता है, आसान नहीं है इसको प्राप्त करना, और कृष्ण आसानी से देते भी नहीं है, हिचकिचाते हैं देने के लिए। कृष्ण देखते हैं मोक्ष चाहिए ले लो, भोग चाहिए ले लो, स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए ले लो, अच्छा व्यवसाय चाहिए ले लो, लेकिन भक्ति चाहिए? मैं सोचना होगा, कृष्ण बोलते हैं, करो करो, करते रहो, फिर मैं सोचूंगा देना है कि नहीं देना है। भक्ति ये भगवान के हृदय में सबसे अनमोल धन है, भगवान के खजाने में सबसे अनमोल रत्न है भक्ति। जो दानी व्यक्ति होता है, कोई अमीर आदमी, भले कितना ही दानी स्वभाव का क्यों न हो, वो लोगों को बहुत कुछ दे सकता है दान में, लेकिन कई पीढ़ियों से कोई अनमोल रत्न आ रहा है तो सोचेगा कि नहीं, इस चीज को मैं नहीं दे सकता, क्योंकि कितने पीढ़ियों ने संभाल के रखा है, और मैं भी इस चीज को मेरे पुत्र को दूंगा, वो उसके पुत्र को देगा, इसको मैं नहीं दे सकता, ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। कोई व्यक्ति मुझे करोड़ों रुपए भी देगा फिर भी मैं ये रत्न नहीं दूंगा उसको। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, भक्ति मैं इतने आसानी से नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे हृदय का सबसे बड़ा रत्न है। जैसे कि हमने कहा कि कोई ऐसा व्यवसाय हो जिसमें थोड़ा सा दिन में 2 घंटा काम करने से 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन ये भी सुदुर्लभा है कि नहीं? आसानी से मिल जाता है ऐसे व्यवसाय? नहीं, बहुत कठिन है। तो उसी तरह से भक्ति है तो सरल एक दृष्टि से देखा जाए, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए कृष्ण आसानी से ये भक्ति को प्रदान नहीं करते हैं। पांचवा लक्षण कौन सा है? शांद्रानंद विशेष आत्मा, मतलब इसमें जो आनंद मिलता है वो इतना तीव्र है, इतना गहरा है कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते, इसकी गणना नहीं कर सकते, हमारे चिंता कल्पना के बाहर है, इतना आनंद मिलता है। और छठा है श्री कृष्ण आकर्षिणी, केवल भक्ति करने से ही हम भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं, हमारे पैसे से, हमारे बंगले से, हमारे शक्ति से, बुद्धि से भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये संसार के लोग इन चीजों से आकर्षित होते हैं। कोई आदमी जाके करोड़ों रुपए किसी दुकान में दिखाए या किसी रास्ते में दिखाए, सब लोग अरे देखो 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 कितने पैसे है इसके पास, सब वाह वाह करने लगेंगे। किसी की बहुत बुद्धि है, बहुत बड़ा घर है, ये है, लोग आकर्षित हो जाते हैं। संसार के लोग इन चीजों से भले ही आकर्षित हो जाएं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन चीजों से आकर्षित नहीं होते हैं। वो किस चीज से आकर्षित होते हैं? केवल भक्ति से। आपके हृदय में उनके प्रति भक्ति कितनी है, भगवान यही चीज देखेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये हुए छह लक्षण भक्ति के। चार लक्षणों की चर्चा हम कर चुके हैं, आज संक्षेप में हम पांचवें लक्षण की चर्चा करेंगे, जो क्या है? शांद्रानंद विशेष आत्मा। आप जानते हैं कोई धातु होता है ना, ये धातु के ऊपर आप कुछ उंगली रखें तो उंगली अंदर जाएगी, लोहे के ऊपर आप रखेंगे देखो लोहा है अंदर नहीं जाती, लेकिन हवा में उंगली जाइए डालिए तो हवा में उंगली जाती है। क्यों? क्यों? हवा में ये बहुत सूक्ष्म वस्तु है, इसके जो अणु हैं दूर दूर हैं, इतने घने नहीं हैं, लेकिन इसमें जो अणु हैं वो बहुत पास पास में है, घना है ये, इसलिए इसमें आप उंगली नहीं डाल सकते हैं, अंदर नहीं जाएगा, ये पैक है बिल्कुल, इसके अणु, इसमें कुछ और वस्तु नहीं जा सकता। हवा में जा सकता है, पानी में भी जा सकता है, तेल में जा सकता है, आग में भी थोड़ा बहुत ऐसे करके आप डाल सकते हैं, लेकिन धातु में, पृथ्वी में नहीं डाल सकते आप, क्योंकि बहुत घना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे भक्ति का विकास हृदय में होता है, आनंद की वृद्धि होने लगती है हृदय में, आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। शुरुआत में आनंद कैसा होता है? हवा की तरह, थोड़ा कुछ हो जाए वो दुख अपनी उंगली डाल सकता अंदर, थोड़े दूसरे विचार है संसार के बारे में, व्यवसाय के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, जो विचार आते हैं उंगली डाल के अपने सुख को भंग कर सकते हैं। हम सोचे अरे मंदिर में आए, कीर्तन किया, कितना अच्छा लगा, प्रसाद लिया, घर गए, अचानक याद आ गया अरे व्यवसाय में ये समस्या हो गई, फुस गया पूरा आनंद जो भी था सब नष्ट हो गया। शुरुआत में ऐसे होता है, शुरुआत में अपने आनंद जो है वो पक्का नहीं होता, घना नहीं होता है, हल्का होता है आनंद, हवा की तरह बहुत जगह होता है अणु के बीच में, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते रहते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं, वैसे वैसे हृदय में जो आनंद है वो घना होता जाता है और गाढ़ा होता जाता है, और बढ़ते 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 इतना शक्तिशाली, मजबूत हो जाता है, कड़क हो जाता है वो आनंद हृदय में, कि कोई भी दूसरा विचार मन में आ ही नहीं सकता भगवान के सेवा के अलावा, और ऐसे दुख के लिए हृदय में जगह ही नहीं रह जाता, दुख की उंगली प्रवेश ही नहीं कर सकती, अगर प्रवेश करेगी तो टक्कर मार के फिर से आ जाएगी। तो जब ऊंचे अवस्था में पहुंच जाता है भक्त, तो उसके हृदय में जो भक्ति का आनंद होता है, उसको शांद्रानंद विशेष आत्मा कहते हैं। मतलब जिस आनंद की तुलना किसी से नहीं कर सकते, जो अतुल्य आनंद है, जिस आनंद की गणना, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, वो आनंद है शांद्रानंद विशेष आत्मा। वो ऐसा आनंद जिसके सामने हर एक संसार का सुख या अन्य आध्यात्मिक सुख भी जैसे मोक्ष का है वो तुच्छ लगने लगते हैं। आपको चाहिए ऐसा आनंद? किसको चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए ना, लेकिन उत्साह से नहीं बोला किसी ने, उत्साह नहीं। लेकिन जैसे आएंगे तो श्रद्धा बढ़ जाएगी कि हाँ ऐसा आनंद मिलेगा। हमको श्रद्धा होना चाहिए कि भक्ति मार्ग में रहने से केवल अगर हम टिके रहेंगे, भक्ति में भक्तों के संग में आते रहेंगे, हरि नाम लेते रहेंगे, तो यही आनंद हमें भी एक दिन मिलेगा। हम होंगे कामयाब। अगर हम ये करते रहे तो जरूर कामयाब होंगे। भक्ति पथ को हमने छोड़ दिया तो फिर सब छू हो जाएगा। लेकिन केवल इस मार्ग में हम बने रहे तो ये शांद्रानंद विशेष आत्मा ये रहेगा। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि ब्रह्म सुख या ब्रह्मानंद एक ओर है और भक्ति का जो आनंद है वो दूसरी ओर है। ये ब्रह्मानंद मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब निराकार, भगवान का जो तेज है ब्रह्म, तो ब्रह्म ज्योति, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्मानंद मतलब इस ब्रह्म में लीन हो जाना या इसके ऊपर ध्यान करना। ऐसे भी ज्ञान योगी करते हैं। तो ऐसे जो ब्रह्मानंद होता है इसको आपने करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ा दिया, फिर भी जो आनंद इससे मिलेगा वो भक्ति के आनंद के सागर के एक बूंद के बराबर भी नहीं होगा। तो देखिए कितना फर्क है। रूप गोस्वामी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, परार्ध। संस्कृत शब्द भाषा में ये शब्द का अर्थ होता है कि जो सबसे बड़ा अंक है जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है, अंक है जो जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं? 10 करोड़, 100 करोड़, करोड़ करोड़, 10 लाख करोड़, कितना बड़ा नंबर आप कल्पना कर सकते हैं? जितना भी बड़ा नंबर आप कल्पना करेंगे ना उसको परार्ध कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि परार्ध गुना भी ब्रह्मानंद की वृद्धि हो जाए फिर भी भक्ति के आनंद का एक बूंद भी के बराबर नहीं होगा। मतलब भक्ति का आनंद कितना है और ब्रह्मानंद कितना छोटा है। और वैसे ब्रह्मानंद ये भौतिक सुख के बहुत ज्यादा है और ब्रह्मानंद भक्ति के सागर के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन भक्ति मतलब क्या है? केवल कोई आदमी आके भजन कीर्तन करता है, भगवान का दर्शन करता है, वो भक्ति नहीं है। हृदय में उसे जान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही वो परम सत्य हैं, वही भगवान हैं और वो एक व्यक्ति हैं। मैं भी एक व्यक्ति हूं, भगवान भी व्यक्ति हैं और उनकी सेवा मुझे करते रहना चाहिए सनातन। ऐसे नहीं कि हम आज सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते कल हम भी भगवान बन गए। और ऐसा नहीं कि कोई भी साधारण आदमी, उसकी कोई योग शक्ति मिल गई, वो भगवान हो गया। ये भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग का मतलब है कि सेवा की भावना हमेशा बनाए रखना, दासत्व की भावना हमेशा बनाए रखना, ये है भक्ति। प्रहलाद महाराज हरि भक्त सुदोधय नाम के ग्रंथ में भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं। जब नरसिंह देव उनके सामने प्रकट होते हैं तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, त्वत् साक्षात्करण आह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्मण्य अपि जगद्गुरो। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे जगत गुरु, हे सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के गुरु, त्वत् साक्षाद कर, जब आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, आपने मुझे दर्शन दिया है, तो आपके दर्शन मिलने मात्र से, आपके साक्षात सानिध्य से आह्लाद, मुझे जो आनंद, दिव्य आनंद मिल रहा है, वो कैसा है? विशुद्ध अवधि स्थितस्य में, एक विशाल शुद्ध सागर के बराबर है जिसका कोई अंत नहीं है। और गोष्पदायन्ते ब्रह्मणि, और ब्रह्म तेज में लीन हो जाना या निराकार ब्रह्म के ऊपर चिंतन करना, इससे जो आनंद मिलता है वो कैसा है? गोष्पदायन्ते, गोष्पदायन्ते मतलब जब एक गाय मिट्टी में चलती है तो मिट्टी में चलते चलते उसके खुरों के नीचे जितना जमीन में खड्डा हो जाता है, मतलब इतना छोटा सा, वो खड्डे में कितना पानी आ सकता है? बहुत छोटा छोटा सा पानी आ सकता है। तो ब्रह्मानंद इतने थोड़े पानी के बराबर है, और भगवान की भक्ति का आनंद एक अनंत सागर के बराबर है। इसलिए मैं आपके भक्ति के सागर में मैं केवल डूब रहा हूं, ऐसे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। उसी तरह से भावार्थ दीपिका नाम के ग्रंथ में श्रीधर स्वामी, जो कि एक भागवत के बड़े टीकाकार हुए बहुत साल पहले, उन्होंने कहा है कि वास्तव में हे प्रभु, जो आपके शुद्ध भक्त होते हैं, जो आपके भक्ति के सागर में तैर रहे होते हैं, उनको इतना आनंद मिलता है कि जब वो ये संसार के आनंद को देखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि, इसको इतना तुच्छ समझते हैं कि मानो ये सब घास का तिनका जो कि सड़क पे पड़ा हुआ हो। मतलब भक्ति का आनंद इतना श्रेष्ठ है कि उसके सामने संसार का हर एक सुख, ये तो दूर की बात है, लेकिन मोक्ष भी बिल्कुल एक सड़क में पड़े हुए तृण के बराबर प्रतीत होता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि भक्ति का आनंद कितना तीव्र है। ऐसा आनंद हम सब चाहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो शांत आनंद विशेष आत्मा नहीं चाहेगा, जो नहीं चाहेगा कि मेरे जीवन में केवल आनंद ही आनंद हो, आनंद का सागर हो और कोई दुख नहीं हो। तो अगर ये करना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को स्थित करना चाहिए। तो ये भक्ति का आनंद क्या है, कैसे आता है? इसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा कल शाम राधाष्टमी के समय हम कर रहे थे। वो शब्द कौन सा है, कोई बता सकता है? एक शब्द कल शाम को जो चर्चा हुई थी राधाष्टमी के समय, वो है लादिनी। याद है ये शब्द का प्रयोग हुआ था कल? लादिनी मतलब क्या है? भगवान की आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। अभी कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान की वास्तव में एक शक्ति है, लेकिन वही एक शक्ति अनंत कार्य संपन्न करती है, और जैसे जैसे कार्य संपन्न करती है वैसे वैसे उस शक्ति को नाम रखे जाते हैं। जब वही शक्ति भौतिक संसार में काम करती है तो उसको महामाया शक्ति कहते हैं, मोह माया शक्ति या महामाया शक्ति। और यही शक्ति भगवान के धाम में भी काम करती है अपने मूल स्वरूप में। अब भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, ईश्वर परमह कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ईश्वर कई हैं नियंत्रण करता, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख कौन है? श्री कृष्ण अनादिर आदि गोविंदा, उनका कोई आदि नहीं है, वो सबके आदि हैं, सर्व कारणों के कारण हैं, और वो सच्चित आनंद विग्रह हैं, विग्रह मतलब रूप, उनका आकार है, उनका रूप है। लेकिन सच्चिदानंद मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? ये सच्चिदानंद शब्द का अर्थ क्या है? सत चित आनंद, सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान से पूर्ण बराबर, और आनंद मतलब दिव्य आनंद से पूर्ण। तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, कि वो शाश्वत है, अमर मतलब शाश्वत मतलब अमर, ज्ञान से पूर्ण है और आनंद से पूर्ण है। तो सत चित आनंद, इन तीन चीजों से मिलती हुई तीन शक्तियां हैं भगवान की। भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उनके तीन विभाजन हो सकते हैं। सत शक्ति से संबंधित है संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति मतलब वो शक्ति जिससे भगवान का अस्तित्व है, जिससे भगवान के धाम में विविधता है, जिससे कि भगवान का रूप बनता है, भगवान के विस्तृत जो भी अन्य उनके अंश हैं वो बनते हैं, वैकुंठ लोक बनते हैं, भगवान की शैया बनती है, भगवान के कपड़े बनते हैं, भगवान के अन्य भक्त और पार्षद बनते हैं। संधिनी शक्ति से, ये सत शक्ति से संबंधित है। और एक शक्ति है जो चित्त से संबंधित है, सच्चित आनंद। चित्त से संबंधित कौन सी शक्ति है? संवित शक्ति। संवित मतलब वो ज्ञान की शक्ति है, जिस ज्ञान से भगवान अपने आप को जान सकते हैं और जिसके बल स्वरूप, जिसके फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ होते हैं, इसको संवित कहते हैं। और जब जीव में ये थोड़ा संवित का अंश प्रदान हो जाता है तो हम कृष्ण को जान सकते हैं। और तीसरा है आनंद से संबंधित, उसको क्या कहते हैं? लादनी शक्ति। संस्कृत में लाद मतलब आनंद, आह्लाद, आह्लाद, लादिनी। तो आनंद प्रदान करने वाली शक्ति भगवान की है लादिनी शक्ति। और ये लादिनी शक्ति हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहती है। जैसे कि एक बहुत अमीर आदमी होता है, उसके बहुत सारे नौकर चाकर रहते हैं, वो सारे नौकर हमेशा उस आदमी के सेवा में तत्पर रहते हैं। हाँ साहब क्या चाहिए? जो चौकीदार होता है जैसे ही गाड़ी लेकर मालिक आते हैं तो गेट खोलते हैं, तैयार हो जाते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, मतलब हमेशा मालिक के सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान की अनंत शक्तियां हैं, परस्य शक्तिर विविधैः श्रुवते। तो अनंत शक्ति भगवान की है, ये हमेशा भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। भगवान के पूछने के पहले ये शक्तियां भगवान को जो चाहिए वो प्रदान करती हैं। इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान है, जो चाहे भगवान कर सकते हैं, केवल इच्छा करने मात्र से। स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाच। हम जब कोई चीज संपन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बहुत बड़ी योजना बनानी पड़ती है, मन में बहुत सोच विचार करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी को व्यवसाय चालू करना है, कितना सोचना पड़ता है, पैसे कैसे आएगा, पैसा कहाँ रखेंगे, कितना खर्च करेंगे, कहाँ जाएगा, कैसे होगा, उत्पादन कैसे होगा, कितने लोग आएंगे, कितनी तनख्वाह पे रखेंगे, तो कितनी योजना बनानी पड़ती है। योजना बनाने से भी काम नहीं हो जाता, योजना बनाने के बाद क्या करना पड़ता है, उसको प्रत्यक्ष रूप में उतारना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कोई भी व्यवसाय करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बराबर है ना? तो परिश्रम करने के बाद भी ये निश्चित नहीं है कि मुनाफा मिलेगा, नुकसान भी हो सकता है। और हो सकता है कि परिश्रम करने के बाद में भी आदमी सोचे कि चलो व्यवसाय नहीं करेंगे। तो हमें किसी कार्य को संपन्न करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाच। स्वाभाविक तौर से उनको सब कुछ मालूम हो जाता है और सब कुछ संपन्न कर सकते हैं। अगर भगवान ने सोचा अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नाश कर दो, जैसे ही सोचा उनकी शक्तियां वो काम क्षण में कर देंगी। अगर हमने सोचा एक क्षण में हमारी स्पर्धा में जो दूसरा व्यापारी है उसका व्यवसाय नाश हो जाए, नाश होता है नहीं होता, वो तो और बढ़ते रहता है, उल्टा हमारा नाश हो जाता है। हमारे सोचने से होता नहीं कुछ, लेकिन भगवान जब सोचते हैं सोचने मात्र से सब हो जाता है, ये है भगवान। इसलिए भगवान कौन है, भगवान क्या चीज है, ये जानना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग इतने भोले भाले हैं कि एक छोटा सा आदमी आके थोड़ी कुछ शक्तियां प्रदान करता है उसको भगवान बोल बैठते हैं। भगवान मतलब वो जो केवल शक्ति मात्र से कुछ भी जो चाहे वो कर सके, केवल चिंता करने मात्र से। तो भगवान की शक्तियां उनके सामने खड़ी रहती हैं, चाहे वो संधनी हो, संवित शक्ति हो या लादनी शक्ति हो। तो ये शक्ति, लादनी शक्ति, ये भगवान श्री कृष्ण के सेवा में हमेशा हाजिर, भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए। और आनंद कितना होता है, अभी देखिए, एक साधारण राजा भी हो, अगर कोई आदमी उनकी सेवा कर रहा हो, उसकी सीमा होती है ना सेवा करने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा 18 घंटा 20 घंटा सेवा कर सकता है मालिक की दिन में। राजा कहेगा नहीं 25 घंटे दिन में मेरी सेवा करो और करते रहो, संभव नहीं है। तो यहां पर जिस व्यक्ति की शक्तियां होती हैं, वो शक्तियों की सीमा होती है मालिक की सेवा करने के लिए। लेकिन भगवान की शक्तियां अनंत हैं, इसलिए जब वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो उनकी कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब है कि वो लादिनी शक्ति जब भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करना चाहती है तो आनंद प्रदान करते 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 इसकी वृद्धि होते 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 कोई सीमा नहीं होती। इसलिए हर क्षण भगवान का आनंद बढ़ते रहता है। और इतना ही नहीं, ये लादिनी शक्ति भगवान के भक्तों को भी आनंद देता है, और भगवान के भक्तों के हृदय में जो आनंद होता है वो भी बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। और भगवान श्री कृष्ण भक्त को शक्ति देते हैं उस आनंद को सहन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल दुख को सहन करने के लिए शक्ति चाहिए, आनंद को सहन करने के लिए भी शक्ति चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि दुख को सहन नहीं कर पाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। अखबार में कभी कभी पढ़ने में आता है, भारत ने कोई क्रिकेट मैच हार गए ना, तो कहीं देश ने कहीं ना कहीं कोई एक आदमी होता है जो हार्ट अटैक से मर जाता है। वो टीवी देखते थे, अरे हार गया, वो उधर हार्ट अटैक आ जाता है, उसको मर जाता है। और जब कोई इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है, कुछ होता है, तब भी कोई ऐसा घटना घटता है कि कोई आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। इतनी खुशी हो जाती है उसको, खुशी सहन नहीं कर पाता, वो हार्ट अटैक से मर जाता है। तो जितना कठिन दुख को सहन करना होता है उतना कठिन सुख को भी सहन करना होता है। तो जब भगवान की लादिनी शक्ति भगवान के भक्त को आनंद प्रदान करते हैं तो वो आनंद की वृद्धि होती रहती है। और भगवान श्री कृष्ण बलराम के रूप में बल देते हैं, आध्यात्मिक बल देते हैं अपने भक्त को। बलराम, आध्यात्मिक बल, जिसे आध्यात्मिक रमण या आनंद मिल सके, वो है बलराम। और लादिनी शक्ति कौन प्रदान करती है, राधा रानी। एक और है श्रीमती राधा जी और दूसरे हैं श्री बलराम जी। तो दोनों चाहिए हमें। बलराम जी आदि गुरु हैं, गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है, उस मार्गदर्शन के अनुसार हम भगवत मार्ग में चलते हैं। फिर राधा रानी की कृपा मिलती है, लादिनी शक्ति हमारे हृदय में भगवान प्रकट कर देते हैं। तो ये लादिनी शक्ति की वजह से भगवान हमेशा आनंद के सागर में रहते हैं। और भक्ति क्या चीज है, भक्ति ये लादिनी शक्ति का खेल है। जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त मेरी सेवा कर रहा है, इसका हृदय शुद्ध होते जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको भक्ति दूं, मेरा प्रेम दूं। भगवान बहुत परीक्षा करते हैं ये लादिनी शक्ति हृदय में प्रदान करने के पहले, अर्थात हृदय में दिव्य आनंद भक्ति का इसको प्रदान करने के पहले भगवान बहुत सोचते हैं। हमने तो देख लिया कि भक्ति का एक लक्षण है सुदुर्लभा, कि भगवान श्री कृष्ण आसानी से भक्ति नहीं देते हैं। तो उसी तरह से जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि ये करके भक्ति सेवा, भक्ति में सेवा करते 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 ये भक्त अब योग्य हो गया है, तो मैं उसको थोड़ा आनंद देना चाहता हूं, थोड़ा प्रेम देना चाहता हूं। भगवान की इच्छा को समझकर श्रीमती राधा रानी, जो कि भक्ति की शक्ति है, भक्ति के आनंद के स्वरूप है, वो भक्त के हृदय में थोड़ी बूंद मात्र, अणुमात्र लादिनी शक्ति प्रदान कर देती है। भक्ति का सार है ये भाव, भाव का सार है महाभाव, और ये महाभाव के मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी, जिनकी चर्चा हम कल कर रहे थे। तो लादिनी शक्ति का सबसे घना रूप श्रीमती राधा रानी है, इसलिए वो श्री कृष्ण को पूर्ण आनंद प्रदान कर सकती हैं। जब वो नहीं होती है कृष्ण को आनंद नहीं मिलता, लेकिन वो भी कृष्ण की शक्ति ही है। तो ये भगवत प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, केवल लादिनी शक्ति का हृदय में प्रवेश। जब भगवान भक्त के ऊपर कृपा करते हैं और ये लादिनी शक्ति हृदय में आ जाती है धीरे धीरे, तो भगवत प्रेम जागृत हो जाता है। और जब ये प्रेम बढ़ते 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 शुद्ध प्रेम हो जाता है, तो ये लादिनी शक्ति हृदय में तूफान खड़ा कर देता है। किस प्रकार का तूफान, जिसमें जो भगवान का भक्त होता है चल विचल हो जाता है भगवान की सेवा में, दिन भर केवल भगवान का चिंतन मनन करता है, भगवान के सिवाय रह नहीं सकता, एक क्षण भी रह नहीं सकता, हर चीज भगवान के संबंध में देखता है। जैसे कई हफ्ते पहले हम संत तुकाराम की सिनेमा देख रहे थे, और उस समय में देखा कि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने एक वेश्या को संत तुकाराम के पास में भेजा उनको बदनाम करने के लिए, और वो वेश्या संत तुकाराम के घर में आकर एक गाना गाने लगी, है ना, और गाने में कुछ ऐसी बातें चल रही थी जो कि संसार के प्रेम के बातें कर रही थी। संत तुकाराम ने ये गीत सुना, बड़े हसमुख चेहरे से बाहर आए आनंद में, लेकिन क्यों आनंद हुआ उनको, क्योंकि जब उन्होंने सोचा ये आकर्षण और सौंदर्य की बात हुई, तो उन्होंने किसके बारे में सोचा, भगवान के बारे में सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये संसार की बातें कर रही है। और वो वेश्या के संगीत की प्रशंसा की, बहुत सुंदर आपने किया, बहुत कहा, अच्छी बात कही आपने। लेकिन संत तुकाराम हृदय में इस महिला को अपनी माता समझ रहे थे, बाद में अंत में दंडवत भी किया उन्होंने कि आपने मुझे भगवान का स्मरण दिलाया, क्योंकि आप जो सौंदर्य की बात करें तो मैं तो मेरे भगवान के बारे में सोच रहा था। तो मतलब कहने की बात यह है कि जब भक्ति तीव्र हो जाती है तो हर कोई बात भक्त को भगवान की याद दिलाती है, और इस तरह से हमेशा भगवान भक्त के हृदय में ये भक्ति के आनंद का तूफान उमड़ता रहता है, उमड़ता रहता है। और आगे 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 बढ़ते 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 ये और भी ज्यादा घना होते जाता है, और फिर इस संसार की कोई बात में भक्त रुचि नहीं रखता, कोई भी विचार भी भगवान की सेवा के अलावा वो भक्त के हृदय में, मन में प्रवेश नहीं कर सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्मापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। आनंद अम्बुधि वर्धनम, आनंद के सागर का वर्धन होता है, पूर्णामृतास्वादनम, पूर्ण अमृत का स्वाद हर पद पे होता है। किस चीज में, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण के नाम उच्चारण भक्ति भाव से करने मात्र से ये नित्य आनंद की अनुभूति हमारे हृदय में होने लगती है। लादिनी शक्ति का काम शुरू हो जाता है हमारे हृदय में। आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, हर पल हर कदम भक्ति के आनंद का सागर बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, और पूर्ण अमृत का स्वाद हम ले सकते हैं। सच्चा अमृत तो ये है। इसलिए भगवान की कृपा से ही, श्रीमती राधा रानी की कृपा से हमें ये आनंद मिल सकता है। चैतन्य महाप्रभु वही भगवान श्री कृष्ण है जो इस आनंद का स्वाद लेने के लिए भक्त के रूप में आए हैं, श्रीमती राधा के भाव में कांति को स्वीकार करके आए हैं ये भौतिक जगत में, और बड़े कृपालु होने के नाते उन्होंने यही परम आनंद, यही लादिनी शक्ति सबके हृदय में प्रदान कर दिया। बिना पात्रता अपात्रता देखे, बिना योग्यता अयोग्यता देखे हुए सबके हृदय में इधर उधर केवल नाम संकीर्तन करके सब जगह कृष्ण प्रेम बांट दिया। कृष्ण प्रेम मतलब क्या? लादिनी शक्ति। प्रेम और आनंद समान अर्थ। तो एक बार ऐसे हुआ कि जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीला में पहली बार भक्ति के लक्षण प्रकट कराने आरंभ किए तो कई अद्भुत घटनाएं होने लगी। जैसे कि आपको मालूम है, जब चैतन्य महाप्रभु पहले प्रकट हुए थे तो पहले कई साल अपने तरुण अवस्था तक उन्होंने किसी को यह संशय भी होने नहीं दिया कि वो स्वयं भगवान है। भगवान की बात दूर है, ये भी किसी को संशय होने नहीं दिया कि वो भगवान के भक्त की लीला करना चाहते हैं। वो केवल एक शुष्क विद्वान के रूप में प्रकट पेश करा रहे थे अपने आप को, केवल व्याकरण न्याय इन चीजों के बारे में तर्क वितर्क करते थे, पढ़ाई करते थे, शिक्षा उपदेश देते थे लोगों को। अपनी पाठशाला थी उसमें वो विद्यार्थियों को सिखाते थे व्याकरण इत्यादि। लेकिन जब उन्हों वो गया गए और अपने गुरु श्री ईश्वरपुरी से दीक्षा उन्होंने ली, उसके बाद जब लौट कर आए नवद्वीप जहां वो रहा करते थे, तो एक ऐसा विचित्र परिवर्तन उनमें आ गया कि सभी लोग उनको पहचान ही नहीं पाए कि ये निमाई पंडित विश्वंभर, जो कि पहले इतना शुष्क ज्ञानी था, हमेशा भक्तों के साथ तर्क करता था, आज इतना भाव विभोर होकर हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन सड़कों में कर रहा है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण, ऐसे विरह में तड़प रहा है, इतने ऊंचे ऊंचे भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहा है, ये क्या बात है, ये चमत्कार कैसे हो गया, किसी को पता नहीं चला। तो चैतन्य महाप्रभु की ये जो विरह की भावना, भक्ति की भावना तीव्र होती जाती थी दिन ब दिन, और जो भी उनसे मिलता उनको जाके पूछते कि कहां है कृष्ण, कहां है, और जो भी उनके भक्त उनसे कहते वो शांत नहीं हो जाते। उनके एक निकट के भक्त थे पार्षद, जिनका नाम था गदाधर पंडित। तो एक बार उन्होंने गदाधर पंडित से पूछा कि अरे गदाधर कहां है कृष्ण, मैं कृष्ण को ढूंढ रहा हूं, कृष्ण कहां मिलेंगे। तो गदाधर पंडित ने सोचा अब क्या बताया जाए इनको शांत करने के लिए। उन्होंने कहा अरे कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में है, क्यों चिंता करते हो, कृष्ण कहीं भाग्य के नहीं गए, हृदय में है तुम्हारे। तो भाव विभोर हो गए थे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने क्या किया, वो हृदय को फाड़ने लगे, अपने छाती को फाड़ने लगे, कहां है अंदर है कृष्ण, चलो मैं ढूंढना चाहता हूं कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण, अपने नाखून से अपने वक्षस्थल को फाड़ने का प्रयास करने लगे। तो गदाधर पंडित को अपना पूरा जोर लगाना पड़ा और चैतन्य निमाय पंडित के दोनों हाथों को पकड़ लिया, नहीं तो अपने आप को ही वो कुछ नुकसान पहुंचा देते। फिर शांत किया, नहीं नहीं ठीक है अभी आएंगे कृष्ण आएंगे आएंगे, किसी न किसी तरह से शांत कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु पंडित की माता सची माता, उन्होंने देखा कि ये गदाधर पंडित बड़ा बुद्धिमान लड़का है, यही अकेला मेरे लड़के को शांत कर सकता है। तो एक बार ये लादिनी शक्ति आ जाती है हृदय में तो व्यक्ति इस तरह के उसके हृदय में तूफान आ जाते हैं। फिर ऐसे ये घटना के थोड़े समय बाद एक बार निमाय पंडित वो गंगा जी के तट में गए, जैसे कि वो रोज जाते थे स्नान करने के लिए, और गंगा के तट पर उन्होंने थोड़े गायों को चरते हुए देखा। और जैसे ये दृश्य देखा उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, मैं वही हूं, मैं वही हूं। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए थे ना, भक्त की लीला कर रहे थे, लेकिन अभी गायों को देखकर उनको स्मरण आया, अरे मैं भक्त नहीं, मैं वही हूं। कौन वही? श्री कृष्ण हूं। गायों को देखकर उनको याद आया कि मैं भगवान हूं। ये भगवान की लीला होती है, अरे मैं वही हूं, वही हूं, मतलब नंद महाराज का पुत्र, वृंदावन का कृष्ण हूं मैं। और भागते भागते उनके भक्त श्रीवास ठाकुर के घर में गए। श्रीवास ठाकुर गृहस्थ थे और भगवान श्री कृष्ण, तो वो श्रीवास ठाकुर के घर दौड़ते हुए आए, मैं वही हूं, मैं वही हूं। और श्रीवास ठाकुर अपने घर के मंदिर में नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे, दरवाजा बंद करके। जोर से शेर की बरस समान आए चैतन्य महाप्रभु वहां पर, दरवाजे में लात मार दिया, अरे शिवास उठो उठो, तुम नहीं जानते कि मैं वही हूं। शिवास, अरे कौन वही हो, क्या है, क्या चल रहा है? तब तक उनके भक्तों को भी पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। सोच रहे थे निमाय पंडित भक्त बन गया, इतना जानते थे, लेकिन ये स्वयं कृष्ण है ये नहीं जानते थे। और जैसे शिवास ठाकुर ने देखा दरवाजा खुल गया और निमाय पंडित सामने आ गए, उस समय निमाय पंडित ने अपना चतुर्भुज विष्णु रूप प्रकट करा किया है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। शिवास पंडित ने जब ये दृश्य देखा तो लादिनी शक्ति हृदय में और तीव्रता से बढ़ गई और दृश्य को देखकर आनंद से भाव विभोर हो गए। उनको पता नहीं चला कि कितना आनंद उनके हृदय में उभर रहा है। और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़े, फिर से जागे और फिर उन्होंने सुंदर प्रार्थना स्तुति करना अर्पण किया, अर्पण करना शुरू किया निमाय पंडित के प्रति कि हे प्रभु, मैं तो एक साधारण गृहस्थ हूं और वो भी आपकी योजना से। आपने मुझे ये संसार के चक्र में अटका दिया है, न जाने आपके क्या उद्देश्य है मेरे लिए, लेकिन मैं तो विष्णु की पूजा करते आया हूं, कृष्ण की पूजा करते आया हूं, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं मालूम था कि आप वही हैं। अब यही कृपा आप मेरे सारे परिवार के सदस्यों के ऊपर कीजिए। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिवास, मैं आज तुम सब के ऊपर कृपा करने के लिए यहां पर आया हूं। बुलाओ तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं उन सबको बुलाओ। तो श्रीवास ठाकुर ने जल्दी जल्दी अपने परिवार के सदस्यों को बुलाया, सब आ गए, उनकी पत्नी, उनके बच्चे वगैरह सब आ गए। और सबके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने असीम कृपा कर ली और सबके सिर के ऊपर अपने चरण कमल रखे, परम आशीर्वाद सबको दे दिया, प्रदान किया, और सारे परिवार के सदस्य भाव विभोर होकर गिर पड़े। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा कि हे श्रीवास, तुम क्यों घबरा रहे हो? अब इसके पीछे इतिहास ये है कि इस समय तक चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन का आंदोलन शुरू किया था। नगर संकीर्तन निकलते थे नवद्वीप में हर रोज, और बड़ी संख्या में भक्त निकलते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ नगर संकीर्तन में। और उस समय मुसलमानों का राज था वहां पर बंगाल में, और वहां के जो नवाब थे और खास करके जो काजी थे, उन्होंने धमकी दी थी कि यहां के जो भी भक्त यहां इसमें शामिल हो रहे हैं हम इनको मार डालेंगे, उनका सब कुछ नाश कर डालेंगे। तो शायद चैतन्य महाप्रभु के मन में यह विचार था कि हो सकता है कि श्रीवास पंडित नवाब और काजी के धमकी पर। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि हो सकता है कि श्रीवास पंडित उनकी धमकियों से डर गए हों। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित से बोलने लगे कि डरो नहीं, तुम नहीं जानते कि मैं भगवान हूं, मैं स्वयं उस राजा के पास जाऊंगा, नवाब के पास जाऊंगा, और उसे मेरे नियंत्रण में कर लूंगा, मेरे प्रभाव में मैं उसको ले आऊंगा, अगर फिर भी वो मेरी बात मानता नहीं है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, फिर मैं उस राजा से कहूंगा कि बुलाओ तुम्हारे सारे हाथी घोड़ी मंत्रियों को बुलाओ, और तुम्हारे जो धर्म के जो भी पंडित हैं, जो भी वो हैं धर्म शास्त्र लेकर उनको बुलाओ और शास्त्रों को पढ़ने के लिए कह दो, और ये जो भी हाथी घोड़े हैं तुम्हारे मंत्री हैं सैनिक हैं उनके आंखों में से आनंद के आंसू निकालो। कर पाओगे? अगर वो बोलता है कि नहीं कर पाऊंगा, या उनके धर्म के लोगों को काजी हो जो भी वो फकीर है उनको बुलाकर फिर भी ऐसा नहीं कर पाता, तो मैं उनको बोलूंगा कि देखो मेरी शक्ति, और मैं उसकी सेना में जो भी हाथी हैं घोड़े हैं सैनिक हैं सेनापति हैं यहां तक कि राजा को भी केवल मेरी इच्छा मात्र से इतना दिव्य आनंद प्रदान करूंगा कि सभी लोग उधर रोने बैठ जाएंगे, दिव्य आनंद से भाव विभोर होकर कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे उधर। ये मेरी शक्ति है, चिंता नहीं करना, सभी को भक्त बना दूंगा मैं। चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते थे मैं सबके हृदय में यही लादिनी शक्ति प्रकट कराऊंगा, यही दिव्य आनंद में सबके हृदय में दूंगा। दिव्य आनंद मतलब भगवत प्रेम शुद्ध। और उस समय एक छोटी बच्ची वहां पर आई, वो श्रीवास ठाकुर के भाई की छोटी लड़की थी, केवल 4 साल की हुई होगी। उस लड़की का नाम था नारायणी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस लड़की की ओर देखा, कहा अरे नारायणी इधर आओ, और कहा बोलो कृष्ण, केवल इतना कह दिया चैतन्य महाप्रभु ने। और उस समय वो लड़की हे कृष्ण कहने लगी, भाव विभोर होकर सारे भक्ति के अष्ट सात्विक विकार उसके शरीर में प्रकट हो गए, आंखों से आंसू रोंगटे खड़े हो गए और कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो गया, शरीर कांपने लगा, पसीने छूट गए, पूरे शुद्ध भक्ति के लक्षण इस छोटे से बच्ची में आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही लादिनी शक्ति, यही शुद्ध प्रेम अपनी कृपा से केवल अपने शब्दों के मात्र से 2 शब्दों से प्रकट करा दिया उस बच्ची के भीतर। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने ये सबसे ऊंचा भगवत प्रेम शांद्रानंद विशेष आत्मा अपनी कृपा से बरसा दिया सबके ऊपर। यहां हाथी घोड़ों की बात चल रही है, चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड वो जंगल में जाते हुए शेरों को हिरणों को सारे पक्षी प्राणियों को नचाया नाम संकीर्तन में। जब हरि नाम संकीर्तन किया उन्होंने तो हाथी घोड़े सब अपने हाथ दो पैर ऊपर करके दो पैरों पर खड़े होकर संकीर्तन करने लगे। और फिर अद्भुत दृश्य ऐसे दिखने में आया कि जो शेर है और हिरण है वो अपने आप को आलिंगन करने लगे, जो स्वाभाविक रूप से शत्रु हैं एक दूसरे के। शेर तो हिरण को खा जाता है और हिरण तो शेर से दूर भागता है, लेकिन झारखंड में क्या देखा गया कि हिरण और शेर आलिंगन कर रहे हैं, आलिंगन करते करते रो रहे हैं प्रेम के आंसू शुद्ध भक्ति के आंसू, और अपने अपनी भाषा में ये सब कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। शेर अपनी भाषा में बोल रहा है, हिरण अपनी भाषा में बोल रहा है, सारे पक्षी प्राणी सब भाव विभोर होकर उस ऊंचे आनंद की अनुभूति कर रहे थे। ये है चैतन्य महाप्रभु की देन। थोड़े समय बाद भी श्रीवास ठाकुर के घर में और एक ऐसी ही घटना हुई। जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे उसके बाद गंगा जल से उनका स्नान अभिषेक कराया जाता था, तो श्रीवास ठाकुर के घर में एक नौकरानी थी, और ये नौकरानी जो है ये चैतन्य महाप्रभु की बड़ी भक्त थी, लेकिन हमेशा पीछे रहती थी, सामने नहीं आती थी। और वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा इस तरह से करती थी कि चैतन्य महाप्रभु के स्नान के लिए जो गंगा जल के मटके हैं वो भर के लेके रखती थी। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि गंगा जल से कितने सारे मटके भरे हुए हैं एक लाइन में बड़े अच्छे ढंग से। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से पूछा कि अरे इतने अच्छे ढंग से रोज गंगा जल कौन भर के रखता है? तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि ये तो हमारे घर में जो नौकरानी है वो करती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दुखी। दुखी आज से उसका नाम होगा सुखी। और उस दिन बाद चैतन्य महाप्रभु ने उस नौकरानी को वास्तव में सुखी बना दिया। शांद्रानंद विशेष आत्मा, दिव्य आनंद प्रदान कर दिया और वो भी भाव विभोर हो गई। ये बच्ची जिसका नाम नारायणी था, जिसका उल्लेख हमने पहले किया, वो जब बड़ी हो गई, उनकी शादी हो गई और उनका एक लड़का हुआ, और लड़के का नाम नहीं, वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने कि चैतन्य भागवत नाम का ग्रंथ लिखा। और चैतन्य महाप्रभु की ये जो कथाएं हम आज आपको सुना रहे हैं वो चैतन्य भागवत ग्रंथ में मिलती हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने ये सबसे ऊंचा प्रेम आसानी से बांटा है, और हम भी इस दिव्य आनंद को, इस दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं अगर हमने चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन में भाग लिया। तो इस आंदोलन में भाग लेने का मतलब क्या है? पहली बात कि हमें जितना हो सके यहां मंदिर में आके भक्तों के संग में बैठना चाहिए, ध्यान से प्रवचन सुनने चाहिए, कीर्तन में उत्साह से शामिल होना चाहिए, प्रेम से भगवान का दर्शन करना चाहिए, प्रेम से प्रसाद का सेवन करना चाहिए, अन्य जो भी सेवाएं हैं हमें वो दुखी जैसे करती थी वैसे करना चाहिए, फिर हम सुखी बन सकते हैं। अगर हमने सेवा को बोझ समझ लिया, हमारा नाम सुखी भी हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। लेकिन दुखी से सुखी बनना है तो जैसे वो दुखी ने सेवा किया वैसे हमें सेवा करना चाहिए। छोटी सी छोटी सेवा भगवान और भगवान के भक्तों के लिए करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। अपने आप को दास दासानुदास समझकर, छोटे से छोटा आदमी, छोटे से छोटा भक्त समझकर, इस भावना से अगर हमने सेवा की तो बहुत जल्दी भगवान हमें ये दिव्य आनंद प्रदान करेंगे। और सेवा इतने सिंसियरली, इतने हृदय से करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सोचेंगे कि अरे देखो ये भक्त मेरे सेवा और मेरे भक्तों की सेवा के अलावा कुछ जानता ही नहीं है, तो मैं जल्दी उसे भक्ति देना चाहिए मुझे। तो हमें ऐसी सेवा भी करनी चाहिए। अपने घर में हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप माला के ऊपर करना चाहिए। शुरुआत में एक माला, दो माला, चार माला, अंत में 16 माला तक पहुंचना चाहिए। कम से कम रोज इतने माला करने चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं ये, इनको हमें रोज पढ़ना चाहिए अपने घर में। और चार नियमों का पालन करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान का नाम जप इत्यादि करके घर में कीर्तन करना चाहिए सारे परिवार के सदस्यों को मिलकर। रात को जल्दी सो जाना चाहिए। और इस तरह का जीवन, भक्तिमय जीवन अगर हमने बिताया तो यही भक्ति का आनंद चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें भी मिलेगा, निश्चित बात है। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए इस बात में। तो उत्साह से हरे कृष्ण महामंत्र हमें रोज लेना करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न है कि तो आप पूछ सकते हैं।
क्योंकि हर बार प्रश्न पूछता हूँ
इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है, आनंद की बात है। चांद्रानंद विशेष आत्मा
हो सकता है इस प्रश्न में कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपात्र हैं, उनको तो ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया जा सकता, लेकिन भगवान जो है तो पात्र अपात्र दोनों को देते हैं। वहीं श्रीमद् भागवतम में एक जगह मैंने सुना है कि श्री जी सुखदेव महाराज को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद शायद मारना चाहते थे, तो इस पर थोड़ा बताइएगा कि कैसे है।
शिव जी सुखदेव जी को
मतलब जो तोता रूप में उन्होंने छुप के ज्ञान लिया था तो उसमें मारना चाहते थे, उनके पीछे भाग रहे थे, इसलिए उन क्षमा मांगा था कि प्रश्न गलती हो तो क्षमा कीजिए।
प्रश्न ये है कि शास्त्र में बताया जाता है कि ब्रह्म ज्ञान जो अपात्र है उसको नहीं देना चाहिए, केवल योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। जहां तक ब्रह्म ज्ञान की बात है वो ठीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं। वो क्या देने के लिए आए हैं? शांद्रानंद विशेषात्मा। वो भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, जो कि ब्रह्म ज्ञान का अंतिम फल है, लक्ष्य है, और यही है उनकी कृपा। इसलिए उनको नमो महावदान्याय, सबसे बड़े कृपालु अवतार माना जाता है, क्योंकि वो इस चीज को देने के लिए आए हैं जो आज तक किसी भी अवतार ने नहीं दिया है। अनिरपित चरिन चिरात करुण यावतीर्ण कलो समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर तुति कदम संदीपितः। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वभक्ति श्रियम अपने भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं सबके ऊपर, उन्नत उज्ज्वल रस, सबसे ऊंचा भक्ति का रस प्रदान करने आए हैं सबको, और ये भेंट अनर्पित चरीम लंबे समय से चिरात किसी भी अवतार ने नहीं दिया था। अनर्पित चरीम चिरात करुण यतावतीर्ण कलौ, कि कलयुग में ये अवतार लेकर वो प्रदान कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है कि भगवत प्रेम वो सबको बांट रहे हैं। पात्र अपात्र न देखी, स्थानास्थान न देखी, कौन सा योग्य स्थान है। किसी को बाजार में मिल गया वहां कृष्ण प्रेम दे दिया, कि घर में मिला उनको कृष्ण प्रेम दे दिया, मंदिर में देखा उनको कृष्ण प्रेम दे दिया, सड़क में देखा उनको कृष्ण प्रेम दे दिया, चांडाल को दिया, ब्राह्मण को दिया, शूद्र को दिया, मिलेच्छों को दिया, क्षत्रिय वैश्य मुसलमानों को दिया, हिंदुओं को दिया, सबको उन्होंने दिया। और आज हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भागवत संघ में सबको ये कृष्ण भक्ति का लाभ मिल रहा है। हर एक देश में, हर एक कौम में, हर एक धर्म के लोग, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सब लोग इसमें शामिल हैं। हर देश के व्यक्ति शामिल हैं इसमें। तो भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्रदान करने के लिए किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो केवल श्रद्धा और ईर्ष्या से थोड़ा मुक्त होना, यही योग्यता है, बस है। ठीक है
शिव जी, क्यों ऐसे वो प्रसंग थोड़ा बताइए कि सुखदेव उन्हीं के पीछे, मतलब कैसे वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको नहीं देना चाहते थे, क्यों?
ये स्वर्ग लोक की बात है, और वैसे सुखदेव गोस्वामी वो तो भगवान के धाम में तोते हैं, श्रीमती राधा रानी के तोते हैं, और शिव जी ने देखा कि यहां स्वर्ग लोक के ऊपर कथा चल रही है। ये कथा केवल देवलोक के लोगों के लिए है, ये सच्चा अमृत है, तो इसमें हमें ज्यादा कोई गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही जान लें कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा में कोई सीमा नहीं है, कोई पात्र अपात्रता नहीं है। भले ही अलग अलग समय भागवत का संदेश सुनाने के लिए कोई अड़चन बीच में आई हो या कोई नियमों का संबंध आया हो, फिर भी, हालांकि ये भागवत सबको सुनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे कई विषय हैं जिनको संभाल के बोला जाता है, जैसे कि कृष्ण भगवान की रास लीला हो, ये कहीं भी जाकर बोली नहीं जा सकती है, और केवल परंपरा में आने वाले भक्तों को ही बोलना चाहिए इसके सामने। जो श्रद्धालु भक्त हैं उनके सामने ही इनकी चर्चा की जा सकती है। और कोई प्रश्न है?
महाभारत में दुर्योधन और पांच पांडव, इन्होंने जुआ खेलने का सीखा है, और बड़े बड़े राजे लोग और सब ने जुआ खेलना सीखा है, इसमें लोगों का क्या दोष है और लोगों को दोष देना क्या आसान है?
अच्छा ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि पांडवों ने जुआ खेला तो हम भी जुआ खेलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पांडवों के साथ जो हुआ उसके बाद में वो भी उनके साथ होगा फिर रोना नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि जुआ कोई भी करे उसका नाश ही होगा। क्षत्रियों के धर्म में एक बात होता है कि कोई उनको किसी चीज के लिए ललकारे, कोई चैलेंज दे उनको, तो उनको स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को स्वीकार करना पड़ा, और ये चाल थी शकुनी की, दुशासन की, दुर्योधन की। इसका मतलब ये नहीं है कि
भगवान विशेष दिन में भगवान का अभिषेक पंचामृत अभिषेक करते हैं हम, और उसके बारे में जो हम मटेरियल यूज करते हैं उसके बारे में वो डिटेल थोड़ा बताइए, वो क्यों करते हैं अभिषेक का।
अभिषेक भगवान के जो अभिषेक करते हैं तो जो सामग्री का प्रयोग हम करते हैं वो क्या है और क्यों करते हैं, इसको पंचामृत कहते हैं। सब दूध है, दही है, घी है, और मद शहद, शहद है, और जो शक्कर का पानी होता है या गुलाब के इसका पानी होता है, इन सब चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, इसको पंचामृत कहते हैं। तो पंचामृत से भगवान को नहलाना, अभिषेक कराना, ऐसे विधि शास्त्र में बताई गई है, क्योंकि ये सारी चीजें शुद्ध मानी जाती हैं और इनसे अभिषेक करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए ऐसे अभिषेक की विधि बताई जाती है, ठीक है। हरे कृष्णा।
ये भक्ति है ना, जो बड़े बड़े भागवत हुए हैं जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत गोस्वामी, इसमें भक्ति रसायन जो है उसमें बता दे कि हमको भक्ति क्या है ये भी नहीं मालूम, ऐसा क्यों बताते।
जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं वो कभी कभी ऐसे बताते हैं कि हमें भक्ति क्या है वो नहीं मालूम, ये एक लक्षण होता है। जितना ज्यादा भक्त भक्ति मार्ग में प्रगति करने लगता है उतना ज्यादा अपने आप को नीचा समझने लगता है, तुच्छ समझने लगता है, और सोचता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो एक शुद्ध जीव हूं, मेरे नाम का उच्चारण करने मात्र से लोगों का पुण्य क्षीण हो जाएगा। लोग ऐसे महाभागवत अपने बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भक्ति का एक लक्षण है कि भक्त इतना नम्र बन जाता है कि ऐसे दयनीय भावना की अनुभूति करता है, ये भक्ति का एक स्वाभाविक लक्षण होता है, ठीक है। और ऐसी नम्रता भगवान को प्रसन्न करती है, घमंड से भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। कि हम मंदिर में आते हैं लेकिन हम कीर्तन में भाग नहीं लेते हैं, हमें कृपया बताइए कि हमारी समस्या क्या है, अभी हम कैसे बता सकते हैं। अभी आप मंदिर में आते हैं और आप कीर्तन नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते, अभी हम क्या बताएं, तो करना चाहिए, नहीं करते हैं तो करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये युग धर्म है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कलयुग में यही एक उपाय है, भक्तों के संग में आकर संकीर्तन करना, इससे हृदय शुद्ध हो जाता है, दिव्य आनंद मिलता है, कृष्ण प्रेम मिलता है, इसलिए हमें करना चाहिए। लेकिन अगर मन कहता कि नहीं नहीं हम कीर्तन नहीं करेंगे, हम किधर जाके ऐसे ही बैठेंगे, समय को पास करेंगे ऐसे ही, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मंदिर में आने के बाद भी अगर हम समय व्यर्थ गवाएंगे, जब कीर्तन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, हम जाके कहीं कुछ बैठ जाएं, कुछ गप्पे मारते रहें, कितना समय का व्यर्थ होना है। इतना सौभाग्य हमें मिला है कि भक्तों के संग में हम आए हैं, तो हरेक क्षण का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, सारे कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए शुरू से अंत तक, आरती और कीर्तन, फिर प्रवचन, भजन, और इसके बाद में जो इष्ट गोष्ठी होती है आप ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लीजिएगा। प्रसाद के बाद में भी गीता श्लोकों का पाठ होता है, भजन होते हैं, उनमें भी आप पाठ ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो कोई हाथ ऊपर कीजिएगा।